सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हो? आओ बैठो। अच्छे सोफे हैं, पुराने हैं लेकिन वफादार। अब तक ना तो टूटे हैं और ना ही इनमें आवाज निकलती है। इधर कैसे हैं?
आपसे एक काम था।
इत्तेफाक से मुझे भी तुमसे काम था। ये उठा लो, ऑफिस की चाबियां हैं। ये तुम्हें देना चाहता हूं। अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, शुमाल जाकर मछलियां पकड़ूं। कैसा रहेगा? एक टोपी पहनकर, एक जाली उठाकर परवाने पकड़ने निकलूं। अब तुम्हारे अलग होने का वक्त आ चुका है, बड़े हो चुके हो, कब तक इनके और उनके लिए काम करोगे?
शिको ने कुछ कहा है?
शम साहिबा भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उन्हें भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एक जवान सिक्योरिटी ले लेना, सिर्फ ये काम रहेगा कि जाते वक्त गैस बंद करके जाना और दरवाजा ठीक से लॉक करना।
असल में बात ये नहीं है।
तो फिर चाबियां उठाकर मुझे भी सुकून दिला दो। तुम जानते हो मेरा दिल ट्रांसप्लांटेड है, जवानी से ये मुश्किल मेरे साथ थी, इसलिए किसी ने मुझे लड़की नहीं दी और इस काम में सिर्फ पहचान है। लेकिन तुम्हारे टूटे दिल पर फिदा जाऊं मैं, हर रोज कहीं फंस जाता है। तुम जवान भी हो, दिल भी है, सालिम भी है, और कल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, हम भी तुम्हारे मुलाजिम बन जाएंगे, अलबत्ता अगर तुमको हम जैसे बूढ़े आदमी की जरूरत हो तो।
मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
तुम जानते हो ट्रांसप्लांटेड दिल जल्दी टूट जाते हैं। तुम चाहते हो दूसरों से पीछे ना रह जाओ, इसलिए पैसे के पीछे जाना चाहते हो, चूंकि तुम समझते हो वो चीज़ जो फरजाद के पास थी और तुम्हारे पास नहीं है वो माल है। तुम कहना चाहते हो इससे कम नहीं हो। मुसीबत यह है कि तुम बजाय इसके कि अपनी ताकत अपने आप को दिखाओ, दूसरों को दिखाना चाहते हो।
क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं?
मुझे यकीन है।
अब तो मेरा सालिम दिल भी टूट गया है।
तुम तो जानते हो मेरा निशाना सही लगा।
लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।
जमाना बदल गया है, समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम आज़र।
वालेकुम सलाम, खुश आमदीद।
कोई नई खबर?
तुम्हारे लिए शरबत बनाया है, फ्रिज में है।
क्या खबर है? और कोई खबर?
कपड़े चेंज कर लो, एक जगह जाना है।
कहाँ?
जहां मैं कहूँ।
आपके घर?
मेरा घर यही है।
तो फिर कहाँ?
तुम्हारे घर चलना है। मैं चाहती हूँ तुम जर्रीन से दोस्ती कर लो।
मेरी लड़ाई कब हुई? उन्होंने मैं घर से निकाला।
देखो फरजाद, वो तुम्हारी फैमिली है और इसके बाद मेरी फैमिली भी है, उनके दिल को राजी करना
उनका
पड़ेगा।
दिल नहीं है।
हमारे पास तो है, तो मेरा दिल मत तोड़ो।
क्या आप उसे कंपनी खोलने से मना कर पाए?
5 एस्पिरिन की गोलियों और 2 मैदे की गोलियों के बावजूद नहीं।
एक बार फिर कोशिश करके देखें, प्लीज।
तो फिर शम साहिबा, 7-8 एस्पिरिन और मैदे की गोलियां तैयार कीजिए प्लीज। ठीक है।
मैं नहीं जानती इस बीच क्या हुआ और जानना भी नहीं चाहती। फरजाद मेरे शौहर हैं, नौशीन भी मेरी बहन जैसी, मैं दोनों को नहीं खोना चाहती। अगर लड़ाई हुई हो तो मैं दोस्ती कराना चाहती हूँ। नौशीन तुम ही कुछ कहो।
क्या बताऊं, फरजाद फालतू में भाव मार रहा है। जब से बाहर रह रहा था महीने में एक बार भी फोन नहीं करता था। अम्मी ने अपनी बेहतरीन जिंदगी इसके लिए खत्म कर दी, ये भी नहीं समझता है।
ये कैसी बात है नौशीन, खूब समझता है। जरीन साहिबा फरजाद की माँ जैसी हैं और मेरी भी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। रफी शायद मुझसे खुश नहीं थे, लेकिन नौशीन क्यों, इसको क्यों महरूम किया?
मैं बाबा के ख्याल को मोहतरम समझता।
अगर तुम्हें कुछ ना दिया होता तो भी यही कहते?
आपकी जरूरत के बराबर तो दिया।
तुमको
है
तुमको कुछ ज्यादा ही दिया है।
किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं ना, वादा करता हूँ।
किसने आप और हम किया है फरजाद, किसने इन दोनों में फासला ईजाद किया? तुमने अपने बाप से ऐसा करने को कहा था?
मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बताएं कि उनके साथ किया क्या कि उनको ऐसा लिखना पड़ा?
क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी 2 साल से लेकर उनके लिए तुमको पाला पोसा, उनके पैर पड़ी के पढ़ाई के लिए तुमको बाहर भेजे हैं और उनको राजी किया कि तुम्हारी और आजर की शादी के लिए तैयार हो जाए। इंजीनियर फरजाद साहब और आजर की अम्मी से मैंने बात की कि दोबारा तुम्हें कबूल कर
लें। कोई पुरानी बात नहीं, क्योंकि मेरे बाबा ने आपकी मोहब्बतों का जवाब दे दिया था।
बहरहाल मेरे हक हुकूक छोड़ो, लेकिन नौशीन का हक इससे कहीं ज्यादा था।
बाबा कोई काम बेवजह नहीं करते थे। इस बीच कोई बात है जो मैं नहीं जानता, वही बात कि जिसका ताल्लुक बाबा के कत्ल से है।
आपके आने से पहले पुलिस बकदर जरूरत तहकीक कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, मेडिकल लॉ वगैरह भी ले जा चुकी है। फरजाद, कोई तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है, कम से कम तोहमत तो ना लगाओ।
अरे भाई, हम यहाँ ऐसी बातें करने नहीं आए थे।
कैसी बातें करने नहीं आए थे?
असली इन बातों से ज्यादा कुदूरत
कुदूरत तो रहेगी। वो मरहूम कुदूरत का बीज हमारे दरमियान बोकर चले गए।
बाप के बारे में ऐसे ना कहें। मुझे मालूम है कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। अगर पैसों की जरूरत हो ठीक है, मैं कर्ज दे दूंगा। अगर किसी चीज की कमी हो तो वो भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन अपने जायदाद में आपको शरीक नहीं करूंगा। बिला वजह आपने आपको थकाए मत।
फरजाद, मेरी आखिरी बात सुन लो फिर चले जाना। मैं एक माँ हूं, अपने हक से गुजर करती हूँ। नौशीन भी होशियार है, उसे भी अपना हक नहीं चाहिए। लेकिन वो माल जो तुम्हारे बाप ने पिछले बरसों में जमा किए, वो तुमसे वफा नहीं करेंगे।
बस यही कम पचा था कि फरजाद हम पर कत्ल का इल्जाम भी डाल दे।
फरजाद मेरे लिए अहम नहीं है, जैसे सोच रहे सोचने दो उसे। पैमान हमारा तुरुप का पत्ता है।
मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको पैमान के ऊपर क्यों इतना इत्मीनान है।
मैंने कब कहा कि उस पर इत्मीनान है?
मैं आपका मतलब नहीं समझ पाई।
मुझ पर भरोसा करो।
तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी।
जख्म को कभी ना कभी उभरना था,
लेकिन मुझे ये मशवरा नहीं देना चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि बाद में जब भी ये बातें सोचो तो मुझे कहो कि मेरी बीवी ने गलत मशवरा
दिया। अब इस मौजू के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बाद ऐसा सोचो। खुद मेरा ही कसूर था, ये जानते हुए कि उन्होंने घर का ताला बदल दिया है फिर भी वहां कदम रखा।
लो।
ठीक है, इसके बाद अब हम तीनों पार्टनर हैं, तीनों मिलकर कंपनी खोलेंगे।
नहीं अलीजा साहब, हम कंपनी नहीं खोलेंगे, तुम खोलोगे। हमने तो दिखावे का फार्म भरा है ताकि तुम्हारा काम आगे बढ़े। तुम भी तो इस फार्म में लिख चुके हो कि हम फायदे नुकसान में तुम्हारे पार्टनर नहीं है।
नहीं भाई, मेरे पास जो भी है वो मेरे दोस्तों ही का। तो
अलबत्ता मेरा भी यही ख्याल है कि आप भी इसमें पार्टनर हो जाएं। इस वक्त के काम से तो बेहतर है। क्या फ़ायदा जो अपने आप को इतनी सारी किताबों में बंद कर रखा है। जो भी आता है उसके लिए उठना पड़ता है, फिर शुक्रिया करना होता है, फिर उनकी हेल्प करना पड़ता है, और आखिर में जब पैसे गिनते हैं तो होता है 47,223।
पहले तो ऐसा नहीं कि जैसे आप कह रहे हैं।
जी हाँ, हमारी कमाई होती है 47,224।
दूसरा ये है कि हमारा काम सकाफती है।
जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, बिला तकल्लुफ़ कहता हूँ, इतनी सकाफत किस काम की। कितने लोग किताब पढ़ते हैं, कितने लोग समझते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत से लोगों को पहचानता हूँ कि करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन अपना नाम ठीक से लिख भी नहीं पाते।
लेकिन अपने काम में महारत रखते हैं ना।
जनाब माफ़ कीजिएगा,
जहालत पर फख्र कर रहे हो।
तुम लोगों की मुश्किल यही कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। देखो, आदमी अखलाक, अखलानियत, आज़ादी, फहम और शऊर के बारे में बात करता है, लेकिन काम वही करता है जो उनके फ़ायदे में हो। बेचारे वो हैं जो इन बातों पर यकीन करते हैं और उसके साथ जीते हैं।
तो अब क्या कहते हो, क्या करोगे, साथ दोगे कि नहीं?
देखो, हम दोस्त रहना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं नहीं।
डरो मत, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। असल में जब ये देखता हूँ कि फजाद जैसे लोगों के पास इतना है कि खर्च करना नहीं जानता, तो क्यों ना तुम्हारे जैसे इंसान के पास हो जो होशियार है।
मैं ख्वाहिश कर सकता हूँ, मेरे सामने फजाद का नाम मत लेना प्लीज़।
मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाह रहा था।
छोड़ो, कोई बात नहीं।
देखो, सबसे पहले तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ऐसे कामों के लिए पैसा दे सकता है। पैसा उसका, काम तुम्हारा। अब जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल बहुत काम है।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
शब बख़ैर।
अली रजा,
आप अब तक नहीं सोई?
कहाँ थे इतनी रात तक, कितना मुझे परेशान करोगे?
माफ कीजिएगा, दोस्तों के साथ था।
कल जरा जलाल के पास चले जाना, उन्हें कुछ काम है।
शब बख़ैर।
शब बख़ैर।
रफ़ी के कत्ल के सिलसिले में जिस पर भी शक किया जाए, इनके पास दलील है। इतने सलीके से काम हुआ है कि इंसान को शक हो जाता है इसमें कोई बनावट है। देखिए शाहिन साहब, मेरे ख़्याल में इन सब के पास रफ़ी को कत्ल करने के लिए कोई ना कोई ख़ास वजह थी। रफ़ी के मरने से उसकी दौलत फरजाद को मिलती है, ये उसकी वजह है। ज़रीन और नौशीन इर्स से महरूम हो जाते हैं, तो उनका भी काम हो सकता है इंतकाम लेने के लिए। फैमान भी अमीर हो जाता, उस पर भी शक है। अलीरज़ा ने भी रफ़ी साहब से काफ़ी चोट खाई है। उनके बिज़नेस के रकीब भी रफ़ी को ख़त्म करके कामयाब हो सकते थे। इतने सवालात हैं और उन सब के जवाब भी।
तुम्हारे तमाम अंदाजे तो गलत निकले हैं। जो नाम तुमने लिए उनमें से गालिबन किसी को वसीयतनामे के बारे में खबर नहीं थी ताकि उसके कत्ल के बारे में सोचें। ठीक कहता हूँ?
ठीक है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं गालिबन।
अब तुम भी इसी एक लफ्ज़ को पकड़ कर बैठ जाओ।
अगर वसीयतनामे का मैटर कहीं से लीक हो गया हो तो?
हाँ, लेकिन यह भी तो एक फ़र्ज़ है, इस पर काम किया जा सकता है।
मेरे ख्याल में
जरी अभी भी कह रही है कि रफ़ी के कमरे में नहीं गई थी।
जी हाँ।
उसे बेवकूफ बनाओ, शायद किसी बात तक पहुंच सको।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम अस्सलाम।
अलैकुम अस्सलाम।
डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
डरो मत, मैं जा रहा हूँ। शायन साहब, अब मैं चलता हूँ।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
असल में मुझे जेल जाने की हिम्मत नहीं है।
मिलते हैं।
کوئی بات ہو تو مجھے بھی بتانا۔
ضرور، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
پھر سے السلام علیکم۔
ہاں تو وہاں بیٹھو گے یا یہاں؟
آج کمپنی کو درج کرا دیا۔
37,200 تومان میں ایک کمپنی کھولی جا سکتی ہے، لیکن کمپنی یعنی تعلقات، یعنی بیان کی قدرت، توجیہ کی قدرت، اٹریکشن کی قدرت، نہ کہ ایک جوان جس کے نام کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا آج مینیجنگ ڈائریکٹر ہو جائے یا کمپنی کا چیئرمین۔
میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، شکو نے یہ بات ضرور بتائی ہوگی۔
اس جوان کی پرابلم یہ ہے کہ اسے بھی یقین ہو گیا ہے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہو گیا ہے۔ ایک آفس کھولیں گے، ایک سیکرٹری رکھیں گے اور پھر ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو بلائے گا، اور کوئی کام ہوگا بھی نہیں یہاں تک کہ کمپنی بند ہو جائے۔
اتنا غلط مت سوچیں، مجھے ایک آدمی ملا ہے جو لون دینے کو تیار ہے۔
کتنے سود پر؟
5.5%۔ البتہ یہ نہ سوچئے گا کہ بہت آسان تھا، تعلقات اور ضمانت کی ضرورت تھی، کہ البتہ مل چکی ہے۔
آپ کو کیا کام ہے؟
آپ کو یقین ہے اس رات کوئی آواز نہیں سنی تھی؟
میں نے سوچا کہ قاتل کے بارے میں کچھ پتا چلا کہ مجھے یہاں بلانے میں جلدی کروائی۔ کتنی بار بتانا پڑے گا؟ اس رات میرے سر میں درد تھا، ٹیبلٹ کھا کر سو گئی تھی اور میں نے کچھ نہیں سنا۔ رفیع کی ملاقاتوں کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں رہی۔
ملکی صاحبہ، اس رات آپ رفیع کے کمرے میں گئی تھیں، مجھے نہیں معلوم کس لیے، لیکن گئی تھیں۔ یہ بات کہنے میں جتنی دیر لگائیں گی آپ کو زیادہ نقصان ہوگا۔ ابھی کچھ نہیں بولیں گی؟
کرنل صاحب، میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔
مرحوم ملکی صاحب کے کمرے سے جو چھان بین ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ قتل کے بعد اس کمرے میں گئی تھیں۔ ضرورت ہو تو اس رپورٹ کو آپ کو دکھاؤں۔
معاف کیجیے، تھوڑا دروازہ کھول سکتے ہیں تاکہ تازہ ہوا آئے؟ جی ہاں، میں اس رات رفیع کے کمرے میں گئی تھی۔
रफी, 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 बहुत डरी हुई थी मैं, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। मैं रफी के कमरे में वापस चली गई, चाह रही थी कि जब पुलिस आए तो उसके पर्सनल सामान को ना देख पाए। असल में कुछ पर्सनल कपड़े भी थे। कर्नल साहब, रफी की जायदाद के सिलसिले में बहुत सी बातें हो रही हैं। मैंने तमाम बातें आपको बता दी हैं। नहीं मालूम, शायद मेरा यही गुनाह है कि उनकी इज्जत को बचाना चाहा। माफ कीजिएगा, अब भी मुझसे कहा
नहीं, शायद बाद में जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो।
अब जा सकती हूँ?
जी जी जा सकती हैं,
चलती हूँ,
खुदा हाफिज।
पहुंचो, तुमसे काम है।
अस्सलाम वालेकुम बेमान साहब, मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। साहब के कमरे में।
आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम।
बैठो, आराम से बैठो। इन दिनों कहाँ रहते हो? नए घर में?
जी हाँ, वहीं हूँ।
मैं कहना चाह रही थी कि अगर कोई कमी हो तो बताओ।
शुक्रिया, माफ कीजिएगा, आप क्यों इस कमरे में मुझसे मिलती हैं?
तो ये कमरा हमेशा के लिए बेमसरफ तो नहीं रह सकता ना?
जी, असल में बात यह है, जब भी मैं इस कमरे में कदम रखता हूं तो सर की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, भूल नहीं सकता।
पैमान, रफी मर चुके हैं, अब जिंदों के बारे में सोचो।
मैं जब भी तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। तुम इस उम्र में इस तरह क्यों रहते हो? तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए। ये तुम्हारा हक है कि जिसको चाहते हो उससे शादी करो। मुझे मालूम है कि तुमने नौशीन का हाथ मांगा था। मुझे मालूम है उसे बहुत चाहते हो।
पूरी जिंदगी उस पर निछावर कर दूंगा।
इसीलिए मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं।
हकीकत यह है कि मेरे ख्याल में आपके और नौशीन साहिबा के हक में जुल्म हुआ है। जब तक फरजाद साहब ईरान में नहीं थे तो सर बीमार होते थे और उनकी देखभाल आपके सर होती थी, और जब जायदाद की बात आई तो फरजाद साहब सबसे आगे बढ़ गए।
हाँ, अब तो हो गया है। तुम मेरे बेटे जैसे हो बेमान, लेकिन तुम तो जानते हो कि
मैं तो कह चुका हूँ कि आपके जेरे साया हूँ।
ठीक है, चुनाचे मदद करो और अपना हक ले सके हम। ये मालूम मनाल अपने हकीकी मालिक तक पहुंचाओ। इसी सूरत में तुम भी नौशीन तक पहुंच सकते हो। कहां?
अब एक मिनट भी देर है। वो काम जो आज हो सकता है वो कल पे क्यों टालें? खुदा हाफिज।
कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो तुम।
सोलह पे दस बहुत हाई है। दवाएं मुस्तकिल लेती हैं? डॉक्टर के यहाँ चलेंगी?
अब डॉक्टर इस हालत में क्या कर सकते हैं?
थोड़ा अपना ख्याल रखें। अभी तबीयत ठीक हुई है। बीपी हाई रहना आपके लिए जहर है। अम्मी यकीन कीजिए, पूरा दिन तो बाहर रहता हूँ लेकिन दिल यहाँ रहता है। रात में जब लौटता हूँ तो रास्ते भर ये सोचता हूँ कि खुदा न खास्ता कुछ आपको हो ना गया हो। लेकिन जब घर पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि अब तक मेरा इंतज़ार कर रही हैं तो तबीयत बहाल हो जाती है। सुखो साहिबा, मेरी खातिर अपने ऊपर रहम कीजिए। यह तो कोई बात नहीं हुई, खाना खाती नहीं, बोलना भी छोड़ दिया, अब तो मेरी भी तबीयत नहीं पूछती।
अली रजा, खुदा की कसम इस घर में अब तक हराम पैसा नहीं आया है। जब जलाल साहब ने कहा कि तुम सूद लेने लगे हो तो शर्म से मेरा सर झुक गया। क्या कहूं मैं? बच्चा भी तो नहीं हो कि कान खींचूं तुम्हारे।
सूद की बात नहीं है मेरी अम्मी जान, कोई मुझे पैसा देता है मैं भी काम करता हूँ और उसे उसका प्रॉफिट देता हूँ।
इतनी आसानी से?
जी हाँ, इतनी ही आसानी से।
मैंने कहा था कि तुमसे बात करना बेकार है।
हाँ सर के बाद सारे काम टल गए हैं। कोई देखभाल करने वाला ना हो तो ऐसा ही होता है। अब आप हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह सारे काम फिर से शुरू करेंगे।
क्या दिन थे पुराने घर में। आज़र को ज़रूर यहाँ लाऊंगा कि देखे जिस घर में मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा वो कैसा था। पांचवीं जमात तक यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद इस घर से गए।
आप पूरे 10 साल के थे।
अरे ये झूला अभी तक यही है।
असल में फरजाद साहब, मैं आपकी मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाज लोग आए थे और कह रहे थे कि उन्होंने सर से ज़बानी कुछ एग्रीमेंट किया था, कुछ वादे थे, सर ने कर्ज भी लिए थे। चले अंदर का भी हिस्सा देख लें।
बाबा ने कर्जा लिया था।
असल में एक ताजिर का एतबार उसके कर्ज के मकदार से ही पता चलता है।
क्या खुल नहीं रहा?
क्यों नहीं, जानते हैं बहुत दिनों से इस घर में कोई आया ही नहीं। सर अपने इंतकाल से बहुत पहले यहाँ आए थे। मेरे ख्याल से फ्यूज हो गया है।
कितनी गर्द है यहाँ, एक अच्छी सफाई की जरूरत है।
कल कहा है कि कुछ कारीगर इस जगह की सफाई करें। पूरी कॉपी चेक करूंगा, जितने लोगों ने सर के लिए काम किया हो उनको यहाँ लाके लाइन पे खड़ा करूंगा, और जो भी ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा उनकी खैर नहीं। परेशान ना हो फरजाद साहब, मैं सब संभाल लूंगा।
परेशान नहीं हूं। इसमें क्या है?
कूड़ा कबाड़ा, फेंकने की चीज़ें।
इसकी भी चाबी है?
नहीं भाई, एक सदी से इसमें कोई गया ही नहीं है।
ओहो ये देखो क्या इमारतें खड़ी हो गई हैं। मेरे ख्याल में उस बुढ़िया का घर है, शीरीन साहिबा, है ना?
याददाश्त अच्छी है।
शीरीन साहिबा बेचारी हमेशा अकेली रहीं। उनके घर बेल बजाकर भाग जाते थे, याद है?
2-3 साल हो गए मरे हुए।
जब छोटा था तो उनके लिए परेशान रहता था, हमेशा सोचता था ये कैसे वो अकेले उस घर में रहती हैं। और तुम कहते थे कि वो चोरों को भी पढ़ाती हैं, एक खजाना अपने तहखाने में छुपाए हुए हैं। कैसी कैसी बातें सोचते थे। चलो
बिल्कुल बेवकूफ है ये लड़का, वाकई बिजनेस में बेवकूफ है। जर्रा बराबर भी रफी की अकल इसमें नहीं आई है। क्या आदमी इतना भी बेवकूफ हो सकता है?
वो बूढ़ी अकेले डरती नहीं होगी।
नहीं, वो जानती थी कि उसकी देखभाल करोगे इसलिए नहीं डरती।
तुम्हारी कहानी खत्म हुई?
जी जी।
अब असल बात बताओ।
अगले हफ्ते से मलकी साहब के काम फिर से शुरू हो जाएंगे। ये लड़का भी तो किसी काबिल नहीं है, यानी फिर से सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। सिर्फ काफी है 2 काम फिर से शुरू हो जाए। देखिएगा चुटकियों में मैं किस तरह इसे जाल में फंसाता हूँ। इसका केस भी हमेशा के लिए बंद करा दूंगा।
तुम बैठोगे नहीं? सर चकराने लगा, इतनी देर से चल रहे हो।
जी मैडम।
मुझे उम्मीद है वैसा ही हो जैसा तुमने कहा है।
आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में ये एक हदिया था नुशीन साहिबा के लिए। मैं चाह रहा था कि अगर आप इजाजत
दे दूंगी।
बेहतर होगा कि थोड़ा थोड़ा करके उसको पता चले। ये काम तुम मेरे हवाले कर दो, तुम सिर्फ फरजात के बारे में सोचो। अभी हो सकता है कि नौशीन आ जाए, मैं नहीं चाहती कि हमारी गुफ्तगू के बारे में उसे कुछ पता चले। समझ रहे हो ना पैमान?
ठीक से नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा।
अब यहां से जाओ। उसे क्या चाहिए?
कहता है मेरे बाबा की यादगार चीजें हैं।
अब उसे याद आया? मेरी तरफ से कहना ये घर तमाम सामान के साथ मुझे मिला है। अगर किसी चीज की मिल्कियत की बात करे तो कहना अपने बाप के वकील के साथ आ सकता है। अब जा सकते हो।
जरूर, मेरा सलाम नौशी साहिबा को कह दीजिएगा।
यही काफी है, अब जाओ, ज्यादा ओवर मत हो।
चलता हूँ।